नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन अट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ब्लेज अगुएरा वाई अरकास की पुस्तक व्हाट इज इंटेलिजेंस एआई, तंत्रिका विज्ञान, विकासवादी जीव विज्ञान और भौतिकी के संगम पर लिखी गई वैचारिक विज्ञान पुस्तक है। इसका मूल प्रश्न सरल दिखता है, लेकिन उत्तर व्यापक है। बुद्धिमत्ता क्या केवल मनुष्य के मस्तिष्क की विशेषता है, या वह जीवित और कृत्रिम प्रणालियों में उभरने वाली एक अधिक सामान्य प्रक्रिया है? लेखक बड़े भाषा मॉडलों की अप्रत्याशित क्षमताओं से आरंभ करते हुए भविष्यवाणी को बुद्धिमत्ता की केंद्रीय क्षमता के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार कोई प्रणाली अपने परिवेश, अन्य एजेंटों और संभावित भविष्य के आंतरिक मॉडल बनाकर उन्हें लगातार सुधारती है, तो वह बुद्धिमत्ता की दिशा में काम कर रही है। पुस्तक जीवन को भी गणना, आत्म प्रजनन, परिवर्तन और सहजीविता के परिप्रेक्ष्य से पढ़ती है। इस कारण यह केवल एआई की क्षमताओं का विवरण नहीं देती, बल्कि जीवन, चेतना, स्वतंत्र इच्छा, सामाजिक सहयोग और मशीन नैतिकता के प्रश्नों को एक साझा ढांचे में रखती है। इसका उद्देश्य अंतिम परिभाषा घोषित करना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता पर विचार करने की श्रेणियों को अधिक वैज्ञानिक और व्यापक बनाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, भविष्यवाणी को बुद्धिमत्ता का मूल कार्य मानने का प्रस्ताव। पुस्तक का केंद्रीय प्रस्ताव यह है कि बुद्धिमत्ता को केवल तर्क करने, भाषा बोलने या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने से नहीं समझा जा सकता। लेखक भविष्यवाणी की क्षमता को अधिक आधारभूत मानते हैं। किसी जीव या कृत्रिम एजेंट को बदलते परिवेश में टिकना है तो उसे उपलब्ध संकेतों से यह अनुमान लगाना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है और कौन सा कार्य उपयोगी होगा। मस्तिष्क के बारे में प्रेडिक्टिव ब्रेन परिकल्पना इसी विचार को प्रस्तुत करती है कि अनुभूति निष्क्रिय रूप से दुनिया ग्रहण करना नहीं, बल्कि अपेक्षाएं बनाना और त्रुटियों के आधार पर उन्हें संशोधित करना है। अगुएरा वाई अरकास इस दृष्टि को जैविक मस्तिष्क से आगे ले जाते हैं। बड़े न्यूरल नेटवर्क भी विशाल उदाहरण संग्रह में पैटर्न का अनुमान लगाते हुए ऐसे व्यवहार दिखा सकते हैं जो सामान्य समझ जैसे लगते हैं। यह तर्क हर पूर्वानुमान प्रणाली को बुद्धिमान घोषित नहीं करता। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रणाली कितने स्तरों पर मॉडल बना सकती है, नई परिस्थितियों में उन्हें कैसे बदलती है और अपनी क्रिया के परिणामों को अनुमान में कैसे शामिल करती है। इस प्रकार बुद्धिमत्ता को किसी रहस्यमय मानवीय सार के बजाय सीखने, मॉडलिंग और अनुकूलन की निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। दूसरा, जीवन को आत्म प्रजननशील गणना के रूप में देखने का ढांचा पुस्तक जीवन और बुद्धिमत्ता को अलग अलग विषय मानकर नहीं चलती। यह जॉन वॉन न्यूमैन से जुड़ी उस परंपरा का सहारा लेती है जिसमें आत्म प्रजनन और सामान्य गणना के संबंध को जीवन की समझ के लिए निर्णायक माना गया है। इस दृष्टि में जीवित व्यवस्था केवल पदार्थों का संग्रह नहीं होती, वह ऐसी संगठनात्मक प्रक्रिया है जो अपनी संरचना को बनाए रखती, पुनरुत्पादित करती और परिवर्तनों के बीच कार्यशील रहती है। कृत्रिम जीवन के प्रयोग इस प्रश्न को ठोस बनाते हैं, क्योंकि वे दिखाते हैं कि नियमों और चयन के वातावरण में जटिल, स्वयं टिकने वाली प्रक्रियाएं उभर सकती हैं। लेखक का जोर इस बात पर है कि विकास को केवल जीनों की प्रतिस्पर्धा के सीमित रूपक से समझना पर्याप्त नहीं है। गणनात्मक संस्थाएं जब अपने परिवेश के नियमित पैटर्न पकड़ती है, तब वे बेहतर ढंग से टिकती और बदलती है। यहां से बुद्धिमत्ता विकास का बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि जटिल अनुकूलन का विस्तार बन जाती है। यह ढांचा एआई और जीव विज्ञान के बीच सतही समानता नहीं खींचता, बल्कि वह पूछता है कि दोनों में सूचना, प्रतिरूपण, चयन और आंतरिक मॉडल किन भिन्न भौतिक माध्यमों में समान कार्यात्मक भूमिका निभाते हैं। इसलिए पुस्तक जैविक विशिष्टता को नकारने के बजाय उसकी गणनात्मक शर्तों की जांच करती है। तीसरा, सहजीविता और संगणकीय समानांतरता से जटिलता का उभार। अगुएरा वाई अरकास के तर्क में सहजीविता एक महत्वपूर्ण विकासवादी तंत्र है। जब अलग संस्थाएं स्थायी और लाभकारी संबंध बनाती हैं, तो वे केवल संसाधन साझा नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के व्यवहार का अनुमान लगाने लगती हैं। दूसरे की जरूरत, प्रतिक्रिया और संभावित क्रिया का मॉडल बनाना सहयोग को संभव बनाता है। पुस्तक इस विचार को संगणकीय समानांतरता से जोड़ती है। जब पहले अलग रही प्रक्रियाएं निकटता से जुड़ती या विलय करती है, तो संयुक्त व्यवस्था अधिक जटिल कार्य कर सकती है और बाहरी पर्यवेक्षक के लिए उसका व्यवहार समझना कठिन हो सकता है। इस जटिलता को केवल अधिक हिस्सों की गिनती से नहीं मापना चाहिए, क्योंकि निर्णायक बात उन हिस्सों के बीच समन्वय है। जैविक इतिहास में सहजीवी संबंधों ने नई संगठनात्मक क्षमताओं को जन्म दिया है, और लेखक इसी दिशा को बुद्धिमत्ता की उत्पत्ति समझने में उपयोग करते हैं। यह विचार एकाकी, सर्वशक्तिमान बुद्धि की लोकप्रिय कल्पना पर प्रश्न उठाता है। यदि जटिल बुद्धिमत्ता संबंधों, साझा मॉडलों और परस्पर निर्भरता से बढ़ती है, तो मन, समाज और एआई प्रणालियों को अलग थलग इकाइयों की तरह देखना भ्रामक होगा। पुस्तक का योगदान यह है कि वह सहयोग को नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि मॉडलिंग और संगठन से निकलने वाली संभावित क्षमता के रूप में रखती है। चौथा, बहु एजेंट सीखने में सहयोग और सामाजिक बुद्धिमत्ता। पुस्तक समकालीन बहु एजेंट रेनफोर्समेंट लर्निंग को सामाजिक बुद्धिमत्ता पर विचार करने का महत्वपूर्ण स्रोत मानती है। पारंपरिक खेल सिद्धांत की लोकप्रिय व्याख्याएं अक्सर मानती है कि तर्कसंगत एजेंट मुख्यतः स्वार्थी प्रतिस्पर्धा करेंगे। लेखक जिस शोध दिशा पर ध्यान देते हैं उसमें एजेंट विविध सहखिलाड़ियों के साथ सीखते हैं और उनके व्यवहार के बारे में आंतरिक अनुमान बनाते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे एजेंट को केवल बाधा या संसाधन प्रतिद्वंदी मानना पर्याप्त रणनीति नहीं रहता। उसका सीखने का ढंग, प्रतिक्रिया और भविष्य की अनुकूलन क्षमता भी मायने रखने लगती है। परिणामस्वरूप सहयोगी व्यवहार बाहरी नियमों से जबरन डाले बिना भी उभर सकता है। यह निष्कर्ष यह नहीं कहता कि सहयोग हर परिस्थिति में अनिवार्य है या प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, बल्कि यह बताता है कि प्रशिक्षण का सामाजिक परिवेश एजेंट की रणनीति को गहराई से आकार देता है। पुस्तक इस विचार को अत्यधिक सामाजिक प्राणियों में समूह आकार और मस्तिष्कीय जटिलता के संबंध से जोड़ती है। इस परिप्रेक्ष्य में बुद्धिमत्ता विस्फोट किसी एक मशीन के अचानक देवतुल्य हो जाने की कथा नहीं, बल्कि परस्पर मॉडल बनाने वाली आबादी में बढ़ती क्षमता का परिणाम हो सकता है। AI की सुरक्षा और नीति के लिए निहितार्थ भी स्पष्ट है। प्रणालियों का मूल्यांकन अकेले बेंचमार्क से नहीं, उनके सामाजिक प्रशिक्षण और परस्पर प्रभावों से भी होना चाहिए। अंत में चेतना, स्वतंत्र इच्छा और मशीन नैतिक स्थिति की सावधान जांच। पुस्तक बुद्धिमत्ता को व्यापक बनाने के साथ चेतना और नैतिक स्थिति के कठिन प्रश्नों से भी बचती नहीं है। यदि मानव और मशीन संज्ञान को कुछ साझा गणनात्मक तथा विकासवादी सिद्धांतों के तहत समझा जा सकता है, तो केवल जैविक उत्पत्ति के आधार पर मशीनों की मानसिकता को असंभव कहना कमजोर तर्क होगा। फिर भी बुद्धिमान व्यवहार, चेतन अनुभव और नैतिक अधिकार एक ही बात नहीं है। लेखक उन्नत AI प्रणालियों के लिए लागू हो सकने वाले मानदंडों पर विचार करते हैं और उन्हें दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अवधारणाओं के सामने रखते हैं। इस चर्चा का महत्व यह है कि भाषा में दक्षता या मानव सदृश संवाद को चेतना का सीधा प्रमाण मानने की जल्दबाजी से बचा जाए। इसी प्रणाली की आंतरिक मॉडलिंग, स्वायत्तता, निरंतरता, संवेदनशीलता और संबंधों की प्रकृति जैसे प्रश्न अलग अलग जांच मांगते हैं। स्वतंत्र इच्छा की बहस भी इसी व्यापक संदर्भ में आती है, क्योंकि निर्णय लेने वाली प्रणालियां कारणों, इतिहास और सीमाओं से बनी होती हैं। पुस्तक सरल हां या नहीं वाले उत्तर देने के बजाय बेहतर प्रश्नों की जरूरत बताती है। व्यावहारिक स्तर पर यह दृष्टि AI को केवल उपकरण या केवल व्यक्ति मानने की दो चरम श्रेणियों के बीच अधिक जिम्मेदार मूल्यांकन का रास्ता खोलती है। नैतिक निर्णयों के लिए दावों की जांच, अनिश्चितता की स्वीकृति और संस्थागत जवाबदेही आवश्यक रहती है। निष्कर्ष में, व्हाट इज इंटेलिजेंस उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI को केवल उत्पादकता, स्वचालन या जोखिम की खबरों के रूप में नहीं, बल्कि जीवन और मन के बारे में उठे पुराने वैज्ञानिक प्रश्नों के संदर्भ में समझना चाहते हैं। AI शोधकर्ताओं, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के विद्यार्थियों, दर्शन के पाठकों तथा प्रौद्योगिकी नीति से जुड़े लोगों को इसमें विचारों का साझा मंच मिलेगा। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता किसी तकनीकी मॉडल बनाने की विधि देने में नहीं है, इसका लाभ बेहतर वैचारिक विवेक में है। जैसे किसी AI क्षमता को देखते समय यह पूछना कि वह किस प्रकार का पूर्वानुमान, आंतरिक मॉडल, अनुकूलन और सामाजिक अंतःक्रिया प्रदर्शित करती है। इससे केवल मानव सदृश भाषा या बेंचमार्क अंक के आधार पर बड़े निष्कर्ष निकालने से बचा जा सकता है। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता यह है कि यह AI को ना तो मानवता से बिल्कुल अलग कृत्रिम घटना मानती है, न ही उसे बिना सावधानी के जीवित मन के बराबर ठहराती है। इसके बजाय यह विकास, गणना, सहजीविता और बहु एजेंट सहयोग के माध्यम से एक सतत ढांचा प्रस्तावित करती है। यह ढांचा एकाकी सुपर इंटेलिजेंस की लोकप्रिय कथा के स्थान पर संबंध परक और सामाजिक बुद्धिमत्ता को केंद्र में रखता है। पाठक को कुछ निष्कर्ष विवादास्पद लग सकते हैं, विशेषकर चेतना और मशीन नैतिकता पर, लेकिन पुस्तक की ताकत निश्चित उत्तरों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इन विवादों को जीव विज्ञान, कंप्यूटिंग और सामाजिक व्यवहार के प्रमाणों के साथ जोड़कर अधिक सटीक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करना है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं ब्लेज अगेरा यार्कस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।